जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुना तीरवनधारी यमुना तीरवनधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Thank you. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Radha, Shyama Sundar Radha, Shyama Sundar Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ट वन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ट वन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद आठवां अध्याय। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। बाला द्विजा सुहृत् मित्र पित्रे भ्रात्रे गुरु द्रुहः न मे स्या निरयात् मोक्षः अपि वर्ष अयुता युतैः। बालद्विज सुहृन्मित्र पित्रै भ्रात्रै गुरुद्रः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः भ्रातृगुरुद्रुहः बालद्विजसुहृन्मित्र भ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः माताजि बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः नमेस्यान्निरयान् मोक्षो युतायुतैः बाल लड़के द्विज दो बार जन्म लेने वाले सुहृत शुभ चिंतक मित्र मित्र पितृ चाचा या ताऊ भ्रातृ भाई गुरु शिक्षक का द्रुह मारने वाला न कभी नहीं मैं मेरा स्यात होगा निरयात नरक से मोक्षः मुक्ति ही निश्चय ही अपि यद्यपि वर्ष साल अयुता लाखों युतैः जोड़े जाने पर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, शिक्षकों तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध पाप पूर्ण माना जाता है, मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावतूतं सह परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत शोक कर रहे हैं कि मैंने इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की। भले व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने निजी हाथों से न किए हों, लेकिन उनकी वजह से ये सारी हत्याएं हुई। दुर्योधन वैसे राज चला रहे थे और प्रजा के प्रति तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। अन्याय पांडवों के प्रति था। प्रजा में लोग रह रहे थे, ऐसे कोई विशेष उनको कष्ट नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मेरी वजह से, ताकि मुझे राज सिंहासन पर बैठने का मौका मिले, ये एक भीषण भयंकर युद्ध हुआ जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग जो है मारे गए। और न केवल योद्धा मारे गए, ऐसे भी कई निर्दोष व्यक्ति हैं जो साथ साथ मारे गए, जैसे बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, शुभचिंतक हैं, गुरुजन हैं, इन सब की हत्या हुई। और इस सब की, इन सारी हत्याओं के लिए उत्तरदायित्व जो है, जो जिम्मेदारी है, वो मेरी है। मैं दोषी हूं इसमें, इसलिए मुझे नरक में करोड़ों सालों तक रहना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज बड़े सज्जन हैं, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। सज्जन कौन होते हैं जो सत मार्ग में चलते हैं। सत जन, सत पे चलने वाले व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। इसके विपरीत दुर्जन है जो असत के मार्ग पर चलते हैं। वैसे युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। और जहां भी श्री कृष्ण किसी भी ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं तो जो पंच पांडव हैं वो अवश्य उनके साथ अवतीर्ण होते हैं, भले इस रूप में न हो परंतु किसी न किसी एक रूप में वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में। दूसरी बात यह है कि ये जो भयंकर युद्ध हुआ ये भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार हुआ, ये भगवान की योजना थी। युधिष्ठिर महाराज तो युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी जब वो समझ गए कि धर्म के सिद्धांतों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार उनको युद्ध करना होगा, तब उन्होंने युद्ध किया। साथ साथ उनके जो भाई हैं भीमसेन, अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी बार बार उनको टोकते रहते थे कि आपकी वजह से ये सब हुआ, अब युद्ध कब होगा कब होगा। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो निर्दोष थे, परंतु सज्जन होने के नाते वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे नरक में करोड़ों सालों तक रहना होगा, मैं इस योग्य हूं। आजकल तो कोई नरक में विश्वास नहीं करता है। हाँ, ये भी एक दृष्टि से सही है क्योंकि नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं पर सबने नरक बना लिया है। पृथ्वी लोग को ही जब नरक बना लिया है, अपने घर को अपने निजी जीवन को जब नरकीय बना लिया है, तो नरक में जाने की आवश्यकता क्या है, नरक तो यहीं पर है। एक बार श्री प्रभुपाद एक चुटकुला सुना रहे थे कि एक ईसाई पादरी थे, वो कोयले के खान में गए और वहां उन लोगों को प्रचार करना चाहते थे कि भाई देखो भगवान के शरण में जाओ और ये पाप छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो वहां कर्मचारियों ने पूछा कि ये नरक क्या चीज है, तो पादरी सोचने लगे कैसे समझाएं इनको नरक क्या चीज है। तो सोच सोच कर बोले, हाँ नरक में बहुत अंधकार है। उन्होंने कहा भाई हमारे हम जो खान में जाते हैं तो वहां भी बहुत अंधकार है। अच्छा, तो सोचने और क्या बताएं, हाँ नरक बहुत ठंडा है। हम नीचे नीचे जाते हैं पृथ्वी के नीचे, वहां खान में बहुत ठंडी है। तो ऐसे जो भी वर्णन वो करते गए नरक का, तो ये सारे कर्मचारी बोलने लगे हाँ कोयले के खान में भी तो ऐसी ही परिस्थिति है। तो पादर बेचारे सोचने लगे कि कैसे इनको समझाया जाए कि नरक क्या है, कि नरक एक बुरा स्थान है। हाँ, फिर वो कहने लगे देखो वहां नरक में कोई टीवी नहीं है, कोई अखबार नहीं है। अच्छा, टीवी नहीं अखबार ना चाहिए, तो बताइए फिर क्या करना चाहिए नरक से मुक्त होने के लिए। तो प्रभुपाद कहना चाहते थे कि आजकल यहाँ लोग नरक में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, नहीं कुछ जानते हैं, और आधुनिक काल के कुछ सुविधाओं के दृष्टिकोण से बताना पड़ता है कि देखो नरक में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, तब वो थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। तो जो पाप करते हैं उनको नरक में तो जाना ही है, ये निश्चित है, चाहे हम इसमें विश्वास करें या न करें। ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम जो हैं हर अवस्था में काम करेंगे, चाहे उनके बारे में हम जाने या नहीं जाने। जैसे अग्नि का स्पर्श करेंगे तो हाथ जल जाएगा। जैसे हमारे रसोई घर में सेवा करने वाले प्रीतिवर्धन प्रभु हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। कल परिश्रम करते करते बेचारे थोड़ा फिसल गए, फिसल के उनका हाथ जो है गरम दाल के अंदर चला गया, सारा हाथ चल गया। तो गर्मी या आग जो है ये नहीं देती कि ये हमारा भक्त, ये भक्त है कृष्ण का, है ना, रसोई में बेचारे सेवा कर रहा है, इसको जलाना नहीं चाहिए हमें। ये प्रकृति का नियम है, जहां आग से स्पर्श होगा वहां जलन होगी ही होगी। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा, आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं और कहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, लेकिन सोचिए ठंडे दिमाग से, प्रभुपाद को कह रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मान लीजिए मृत्यु के समय आपको, मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, गोलोक वृंदावन है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, देखिए हम जब जी रहे होते हैं तो हम बड़े खुशी से जीते हैं, क्योंकि हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं, नृत्य करते हैं, सुंदर कथाएं सुनते हैं, तो हमारा जीवन बड़े आनंद से बीत जाता है, कोई नुकसान नहीं है। तो मृत्यु के बाद अगर हमें यह भी पता चले कि कृष्ण है ही नहीं और गोलोक वृंदावन है ही नहीं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि अगर आपको मृत्यु के बाद पता चला कि कृष्ण है, तब आपका क्या होगा? आप कहां जाओगे? आपको तो नरक में जाना होगा। तो इस प्रकार से आजकल के लोग संशय करते हैं कि जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, जो कानों से बात सुनाई नहीं पड़ती, ये सब चीजें झूठ है, उनको केवल प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, उनको अब इन आंखों से देखना चाहते हैं वो कि नरक कहाँ है। तो ऐसे लोगों को अवश्य नरक, उनकी इच्छा पूर्ण होगी, उनको नरक देखने को मिलेगा, लेकिन सही समय पर। जीते जी तो यहां नरक देख रहे हैं और मृत्यु के बाद भी नरक में जाएंगे। तो यहां युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं कि इतनी सारी हत्याएं जो हुई, इनके लिए एक ही फल है और वो है कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा। वैसे जिन वर्गों का वर्णन यहां पर युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, जैसे बालक, ब्राह्मण, शुभचिंतक, मित्र इत्यादि, हाँ, इन सब की हत्या करने से ये बड़ा पाप माना जाता है। ये सारी चीजें वर्जित हैं शास्त्रों में। विशेष करके शास्त्रों में बताया जाता है कि पांच वर्गों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आप बता सकते हैं कौन से हैं ये पांच वर्ग? ब्राह्मण, बच्चे, स्त्रियां, वृद्ध और गाय। ये पांच वर्ग हैं जिनकी किसी भी दशा में रक्षा करनी चाहिए, और अगर इनकी रक्षा नहीं की जाती है और अगर इनकी हत्या की जाती है, हत्या की बात तो दूर है, अगर इनका अपमान भी किया जाता है तो इसका बड़ा भारी परिणाम होता है। परीक्षित महाराज ने एक शूद्र को गाय की हत्या करते हुए, बैल की हत्या करते हुए पकड़ लिया, बैल की रक्षा की और उस शूद्र को दंड दिया। उसी प्रकार से अनेक वर्गों में जितने भी अन्य वर्ग हैं जिनकी जो रक्षा के योग्य हैं, अगर उनको रक्षा नहीं दी जाती तो आदर्श जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करें। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो क्षत्रिय होते हैं उनको मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए, विशेष करके ये चार वर्ग, पांचों में से चार। और जो वैश्य होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वह पशुओं की रक्षा करें और विशेष करके गायों की। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म में एक पद्धति ऐसे बनाई हुई है कि सारे प्राणियों की रक्षा हो, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए बिना वजह से। एक बार प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वो अपने पति के प्रति एक शिकायत लेकर प्रभुपाद जी के पास आई। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या शिकायत है पति के खिलाफ? तो पति हमको बहुत डांटते हैं। तो भाई प्रभुपाद ने पति को बुलाया, दोनों शिष्य थे उनके, क्या बात है, पत्नी को क्यों इतना डांटते हो, क्यों तंग करते हो? तो पति ने जवाब दिया कि हमारे बच्चे को इतना डांटती है कि बस मैं बार बार बोल के थक गया। शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, ये एक वर्ग है जो रक्षा के योग्य है। तो प्रभुपाद ने कहा सही है। तो फिर वो अपने शिष्य की ओर देखा तो शिष्य बड़ी चतुर बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा शास्त्रों में ये भी कहा है कि स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, तो मेरा भी सम्मान रखा जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पति की ओर देखे, ये भी सही है। तो फिर पति बोलने लगे, लेकिन प्रभुपाद जी तीसरे वर्ग है जो रक्षा के योग्य है, जो ताड़न, जिनका ताड़न नहीं करना चाहिए, वो ब्राह्मण है। आपने मुझे दूसरी दीक्षा दी है तो मैं ब्राह्मण हूं, तो आपको मुझे डांटना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहने लगे, नहीं, तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं, तो गुरु को पूरा अधिकार होता है शिष्यों को डांटने के लिए। हालांकि तुम ब्राह्मण हो ये सही है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि वैदिक संस्कृति में ये पद्धति है कि रक्षा सबकी की जानी चाहिए और आश्रय दिया जाना चाहिए इन सबको। तो आश्रय जो देते हैं वो केवल भगवान है, लेकिन भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा सबकी रक्षा करता है, इसलिए राजा को नरदेव कहते हैं, नर रूप में देव या भगवान का प्रतिनिधि। और जो भी यह जिम्मेदारी का पद लेते हैं उन सब के ऊपर ये उनका कर्तव्य होता है कि अन्यों की रक्षा करें। जब नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को प्रचार कर रहे थे, उनको भक्त बना रहे थे, तो उन्होंने, नारद जी ने उनसे कहा कि आप इतने सालों से कर्मकांड में फंसे हुए हैं और कर्मकांड से आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, और इसके लिए आप इतने निर्दोष पशुओं की हत्या कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे प्रचार करके उन्होंने समझा दिया राजा प्राचीन परिषद को, और फिर वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वो वहां चले गए तो उसके पहले ही उनके जो 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेत, वो पहले से ही तपस्या करने के लिए निकल चुके थे। वो जल के नीचे, जल के भीतर तपस्या कर रहे थे। तपस्या खत्म करने के उपरांत जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि सारी पृथ्वी जो है जंगली पेड़ों से भरी हुई है, क्योंकि प्रचेत जो राजकुमार थे वो जल में तपस्या कर रहे थे, जो राजा थे वो भी वन में गए तपस्या करने के लिए, तो पृथ्वी में कोई राजा नहीं था, और ऐसे राजाहीन पृथ्वी के ऊपर कोई कृषि नहीं हो रहा था, और ऐसे जंगली पेड़ जो है वो इधर उधर हो रहे थे, और सब जगह केवल जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा। तो जब प्रचेत बाहर आए तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे हो गया, तो लोग जिएंगे कैसे। तो केवल उन्होंने अपने आंखों से, केवल अपने इच्छा मात्र से इन सारे वृक्षों को जलाना शुरू कर दिया। उस समय सोमदेव, जो कि वनस्पतियों के और औषधियों के अधिष्ठाता देव हैं, वो सामने आए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि ये आपके लिए उचित नहीं है। अब सोमदेव उनके सामने क्यों आए, क्योंकि सोमदेव जो है वृक्षों के अधिष्ठाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः। मैं सारे जो पोषण है, पोषण जो करना चाहिए, सोमो भूत्वा रसात्मक है, औषधियों को पोषण करने वाला मैं हूं। सोमदेव के माध्यम से मैं सारे जो वनस्पतियों को, औषधियों को रस प्रदान करता हूं। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रस आत्मक है। हम देखते हैं कि सब्जियों में, फलों में कुछ रस होता है, कुछ स्वाद होता है, तो वो स्वाद चंद्रमा के किरणों के द्वारा प्रदत्त होता है। चंद्रमा के किरणों द्वारा ये जब पोषण प्राप्त होता है इन औषधियों को, वनस्पतियों को, तब उनमें रस आता है, उनमें स्वाद आता है। और ये जो शक्ति है सोमदेव के किरणों में, वो भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं सोमो भूत्वा, मैं सोमदेव के रूप में प्रकट होकर ये औषधियों का पोषण करता हूं। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक जगह कहते हैं, सोमो वृक्ष अधिष्ठाता स एव वृक्षाणाम राजा, कि सोमदेव जो है वो वृक्षों के अधिष्ठाता देव हैं, उनके राजा हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपर कोई प्राणी नहीं है, कोई जीवित वस्तु वहां पर नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति वृक्षों के वनस्पतियों के अधिष्ठाता देव हैं, उन्हीं के लोक में कोई वृक्ष ना हो, ये क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है। इसका मतलब है जो वैज्ञानिक लोग हैं वो किसी दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि चंद्रमा के ऊपर कोई औषध नहीं है, कोई वनस्पति पेड़ इत्यादि नहीं है। तो खैर, वहां पर सोमदेव उनके सामने आए और प्रचार करके कहने लगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पिता ने आपको आदेश दिया है कि आपको संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये तो सारे प्रजा के लिए पोषण है, आहार है। अगर आप इन सब की हत्या कर दोगे तो प्रजा का आहार क्या होगा? और फिर उन्होंने एक श्लोक कहा, तो का नाम पितरो बंधु दृश पक्षम स्त्रिय पति पति प्रजा नाम भिक्षुणाम गृही अज्ञानाम बुध सुहृत। उन्होंने ऐसे पांच वर्गों का वर्णन किया। जिस प्रकार से तोका नाम पितरो बंधु, तोका नाम मतलब बच्चों का, पितरो, पितरो मतलब माता पिता, द्विवचन है, न केवल केवल माता या केवल पिता, नहीं, दोनों, पितरो बंधु। जिस प्रकार से बच्चों के पालक, भरण पोषण करने वाले शुभचिंतक, उनके पितरों जो पालक होते हैं, और जिस प्रकार से दृश पक्षमा जो आंखों की रक्षा पलके करती हैं, स्त्रिय पति ही जिस प्रकार के स्त्री की रक्षा या स्त्री का पोषण जो है वो पति करते हैं, भिक्षु नाम गृही जिस प्रकार से भिक्षुओं का पालन पोषण जो है वो गृहस्थ करते हैं, और जिस प्रकार से अज्ञान लोगों के शुभचिंतक जो ज्ञानी लोग, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से जो राजा होते हैं वो प्रजा के शुभचिंतक, उनके हितैषी, उनके भरण पोषण करने वाले, उनके रक्षक होते हैं। इसलिए आपको इन सब की रक्षा करनी चाहिए। तो जब यहाँ भिक्षु नाम गृह की बात आती है तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये भिक्षु मतलब जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, साधु हैं, न कि जो अपने जीविका के लिए केवल भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल बेगर्स, ऐसे लोगों की बात नहीं है। जैसे वृंदावन में या ब्रज में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो माधुकरी करते हैं, जगह जगह जाकर ब्रजवासियों से थोड़ी भिक्षा मांगते हैं, दो रोटी सब्जी जो भी कुछ मिल जाता है उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। तो सच्चे जो भक्त होते हैं, सन्यासी आदि, ये प्रामाणिक भिक्षुक है। तो खैर, सोमदेव उनको बता रहे हैं, प्रचेताओं को, कि आपको उसी प्रकार से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। और प्रजा कौन है? जो राज्य में जन्म लेते हैं वो प्रजा है। ज मतलब जन्म, तो जो यहां जन्म लेते हैं, न केवल मनुष्य, न केवल प्राणी, बल्कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो भी सब प्रजा ही हैं। तो यहां सोमदेव कहते हैं ये पेड़ जो है ये भी आपकी प्रजा है, इसलिए इनकी रक्षा आपको करनी चाहिए। तो देखिए, जा ये है वैदिक संस्कृति, जब पेड़ पौधों की रक्षा करना ये भी राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, तो फिर अन्य पशु या मनुष्यों की बात तो दूर है। तो महाराज युधिष्ठिर यहाँ पर सोच रहे हैं कि अरे वृक्ष की बात दूर है, पशुओं की बात दूर है, साधारण मनुष्यों की बात दूर है, मैंने तो बच्चों की हत्या की, मेरी वजह से गुरुजनों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये तो बहुत बड़ा घोर पाप हुआ मुझसे। इसलिए वो शोक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे नरक में ही जाना होगा और लाखों लाखों साल वहां मुझे रहना होगा। तो युधिष्ठिर महाराज तो कभी नहीं जाएंगे नरक में, परंतु वो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें कैसे ये समाज में रहकर बड़े पापहीन जीवन, एक पुण्यवान जीवन जीना चाहिए, अन्यों की रक्षा हमें करनी चाहिए। देखिए जो रक्षक होते हैं और जो रक्षा के योग्य होते हैं उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रेम का संबंध होना चाहिए, ये एक आदर्श है। प्रभु रामचंद्र के समय प्रजा प्रभु रामचंद्र जी से ऐसे प्रेम करती थी कि जैसे बच्चे जो हैं माता पिता को प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र प्रजा की उसी प्रकार से रक्षा करते थे, उनका देखभाल करते थे, उतना ही प्रेम देते थे जैसे माता पिता बच्चों को दिया करते थे। और जब ऐसे कोई घटना होती है राज्य में जो कि असाधारण हो, तब राजा को दोषी ठहराया जाता था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो एक ब्राह्मण वहां पर आए और बड़े क्रोधित रूप में आए और महाराज उग्रसेन को डांटने लगे और कहने लगे कि मैं एक पुण्यवान ब्राह्मण हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा जो छोटा बच्चा है, जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो आपके राज्य में एक निर्दोष बालक की मृत्यु हुई, इसका मतलब है कि आप दोषी हैं, आपने कोई गलती की है, इसलिए आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। तो देखिए राजा के ऊपर कितना बड़ा कर्तव्य होता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजा जो होता है उसको प्रजा के पाप को स्वीकार करना पड़ता है, एक छठा हिस्सा। तो वो ब्राह्मण कहने लगे कि इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई गलती है, आप कोई गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा निर्दोष बच्चा मर गया। महाराज उग्रसेन को बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर, तो उन्होंने कहा ठीक है अगली बार ऐसे नहीं होगा, आप चिंता नहीं करना। तो वो ब्राह्मण चले गए। फिर से थोड़े महीने बाद वो लौट कर आए, उनका दूसरा बच्चा भी मर गया। तो महाराज उग्रसेन को, कृष्ण को, बलराम को, सबको डांटने लगा कि आपके राज्य में ये सब हो रहा है। तो सारे लोग वहां बैठकर सोच लगे कि क्या कारण हो सकता है। और जब ऐसे कई पुत्र मर चुके थे तो जब अगली बार वो ब्राह्मण वहां पर आए तो वहां अर्जुन भी उपस्थित थे। तो अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, जब तक मेरा गांडीव बाण है और जब तक ये भुजाएं हैं तब तक इस राज्य में ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैं निजी आपके घर में आऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे होगा इस बार। तो जब आपकी पत्नी जो है जन्म जो गर्भवती है इस समय, जब बच्चे के जन्म के लिए बिल्कुल तैयार हो उस समय मुझे बुलाइए, मैं आके आपकी रक्षा करूंगा। तो सही समय पर वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन वहां पर गए अपना गांडीव धनुष लेकर और उस घर के इर्द गिर्द उन्होंने अपने तीरों से एक आवरण बना दिया जिससे कि अंदर कोई प्रवेश न कर सके, यहां तक कि यमराज भी प्रवेश नहीं कर सके। और वहां पर पहरा देने लगे, अर्जुन अपने धनुष बाण को लिए हुए वहां पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो ब्राह्मण बहुत कोसने लगा अर्जुन को, अरे मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं कि मैंने आप क्षत्रियों के ऊपर विश्वास किया, कि आप मेरे बच्चों की रक्षा करने वाले हैं। वास्तव में मैं जानता हूं कि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। और इस प्रकार से बहुत बोलने लगे वो ब्राह्मण। अर्जुन ने व्रत लिया था, वचन दिया था कि अगर आपके बच्चे की हत्या हुई तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो अब जब बच्चे की हत्या हुई तो अर्जुन अपने वचन को निभाने जा रहे थे, अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण आए वहां पर और कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, हम जाते हैं। तो जगह 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 घूमने लगे, यमराज के यहाँ गए थे उधर। कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। आखिर वो उनको महाविष्णु के पास ले गए। और फिर महाविष्णु जब अर्जुन और कृष्ण को देखा तो उन्होंने हाथ जोड़े, नमस्कार किया और कहने लगे कि वास्तव में आप दोनों को देखना चाहता था, आपका दर्शन मैं करना चाहता था और कोई तरीका मेरे पास नहीं था। तो महाविष्णु जो है वो स्वयं श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। महाविष्णु तो श्री कृष्ण के अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण की जो सुंदर नरलीलाएं होती हैं वो इतनी मोहक होती हैं, ये रूप भी इतना सुंदर होता है कि स्वयं महाविष्णु भी इनका दर्शन करना चाहते हैं। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बच्चों को फिर से लिया और ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण को पूरी तरह से संतुष्ट किया। तो इस छोटी सी कथा से हम ये सीख सकते हैं कि क्षत्रियों का उस समय कितना महत्वपूर्ण कर्तव्य हुआ करता था कि ऐसे सबकी रक्षा करना, चाहे बच्चे हों, ब्राह्मण हों, स्त्रियां हों, गाय हों, वृद्ध हों, सबकी रक्षा करना उनका कर्तव्य होता था। आजकल के समाज में प्राय ऐसे नहीं देखा जाता। पांचों के प्रति बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और वो केवल इसीलिए है कि वैदिक संस्कृति को हमने त्याग दिया है। और वैदिक संस्कृति को त्याग दिया इसका मतलब श्री कृष्ण को त्याग दिया। जब हम भगवान को त्यागेंगे तो कोई संस्कृति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि केवल अगर श्री कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाया जाए, सभी लोग कृष्ण भक्त बने, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, तो खुद ब खुद सभी कुछ ठीक हो जाएगा। ये अंततः इस कलयुग में हमारी वास्तविक सुरक्षा है। इस दुनिया के जो रक्षक हैं, जो आजकल भक्षक हो गए हैं, रक्षक ही भक्षक हो गए हैं, वो कितना हमारी रक्षा कर सकेंगे इस कलयुग में? हमारे वास्तविक जो सुरक्षा देने वाले व्यक्ति हैं वो है श्री कृष्ण, जो अपने हरि नाम, अपने नाम रूप में, नाम अवतार में हम सब की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। तो हमें केवल हरि नाम का आश्रय लेकर हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कोई टीका टिप्पणी, प्रश्न इत्यादि? हाँ जी, प्रश्न ये है कि महाराज युधिष्ठिर नरक में क्यों गए जबकि जो भी कुछ हुआ कृष्ण की इच्छा या अनुमति के अनुसार हुआ? नहीं, युधिष्ठिर महाराज तो ऐसा सोच रहे हैं, वो बहुत नम्र हैं युधिष्ठिर महाराज। अब वो सोच रहे हैं कि सब सारी गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों सालों के लिए नरक में रहे। युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इस योग्य सोच रहे हैं, परंतु वास्तव में तो वो तो इस योग्य नहीं है, वो तो भगवान के धाम के वासी हैं, नित्यवासी हैं। कैसी परिस्थिति आ जाए तो
अच्छा
तो करना चाहिए।
इस पर से हम लोग को हिंसा का बात नहीं करना है ना, उसमें हिंसा का बात आवश्यक है।
अर्जुन भी तो भगवान के भक्त थे ना, परीक्षित महाराज भी भगवान के भक्त थे। हिंसा बुरी चीज नहीं है, कई परिस्थितियों में अहिंसा बुरी चीज है, लेकिन इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए। अगर अधर्म के बल पर किसी ने हिंसा किया वो तो बड़ा पाप है, उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन अन्यों की रक्षा करने के लिए, धर्म के पालन के लिए कभी कभी हिंसा अनिवार्य पड़ जाता है, अनिवार्य होता है। हिंसा के बिना काम नहीं चलता कभी कभी। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कुरुक्षेत्र का युद्ध। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाए। इसलिए फिर अंततः उन्होंने कहा कि और कोई मार्ग नहीं है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तो युद्ध हुआ। दुष्टों को दंड देने के लिए कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय है उसका काम है हिंसा, सब समय नहीं, जब आवश्यकता पड़े तब। अगर क्षत्रिय जो होता है वो ऐसे हिंसा से घबराए तो वो अपने धर्म को त्याग देगा, वो नहीं, सच्चा क्षत्रिय नहीं है। उसको ब्राह्मण की तरह नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण भले हिंसा न करे कभी कभी, लेकिन क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता, वो अपने कर्तव्य को त्याग नहीं सकता। जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।